हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
हालात बुरे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके मुसन्निफ आयतुल्लाह मिस्बाह यज़दी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 11, पेज नंबर 104 से। क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट में कवानीन पास होने से मुश्किल हल नहीं होती, क्योंकि इख्तलाफी सूरत में हर एक शख्स अपने को हक समझता है और अपने हक में कानून की तफसीर करता है। जीम कुवा मुजरिया, इसमें कोई शक नहीं कि माशरा अपने अहदाफ व मकासद तक पहुंचने के लिए कानून का मोहताज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम अवामुन नास तमाम कवानीन की रियायत करें, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात से कानून की मुखालफत हो सकती है। कानून के लिए ज़रूरत है कि इसके जारी होने की ज़मानत भी हो, और यह ज़मानत इजराई कुवाए मुजरिया के ज़रिए मुमकिन है कि जिसके पास कवानीन को जारी करने के लिए बाअंदाज़ा काफ़ी वसाइल होते हैं। लिहाजा कुवाए मुजरिया की ज़िम्मेदारी ये है कि बनाए हुए कवानीन पर अमल कराए और ख़िलाफ़ वर्जी से रोके, और इसी तरह कुवाए कज़ाइया के अहकामात सज़ा व कैफर को भी जारी करे, और इस सिलसिले में कवानीन को जारी करने और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों और मुजरिमों को सज़ा देने के लिए पुलिस वगैरह का भी सहारा लिया जा सकता है। हमने मुख्तसर तौर पर जमहूरियती निज़ाम में तीनों ताकतों के जुदा होने के नज़रिए को बयान किया। अगरचे हम इस सिलसिले में इस्लाम के नज़रिए को बयान करने के दर पर नहीं हैं, लेकिन इस नुक्ते की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के असासी और बुनियादी कानून में इन ताकतों को जुदा होने के नज़रिए को कबूल किया गया है। लेकिन ये तीनों ताकतें विलायत फ़िक्किया की ज़ेर नज़र होती हैं, जिसकी वजह से निज़ाम इस्लामी हो जाता है। चाहे इस्लामी निज़ाम में तीनों ताकतों की मशरूयत इस चीज़ की वजह से है कि ये सब के सब इलाही और इस्लामी ढांचा रखते हों और इनका राबता खुदावंद आलम से हो, और विलायत फ़िक्किया की वजह से ही निज़ाम इलाही हो जाता है, और निज़ाम की मशरूयत का मिलाक व मयार भी यही विलायत फ़िक्किया है। जिस वक्त हम इस्लाम के कवानीन की वजह और इनको जारी करने की बातें करते हैं, और हम ये दावा करते हैं कि तमाम कवानीन और मुकर्रात इलाही इस्लामी होना चाहिए, तो हम इस बात को मुस्लिम और तयशुदा मान लेते हैं कि इस्लाम का ख़ुलासा नमाज और रोज़ा और दूसरी इबादतों में नहीं होता, बल्कि इस्लाम एक कामिल मजमूए का नाम है कि जिसमें इज्तमाई कवानीन भी शामिल होते हैं। यानी इज्तमाई कवानीन के तमाम शोबे इस्लाम में शामिल होते हैं, जैसे माली मसाइल, हुकूक मदनी, तजारती हुकूक और बैनुल अक़वामी हुकूक वगैरह के, जिनकी माशरे को ज़रूरत होती है। लिहाजा हम ये नज़रिया रखते हैं कि इस्लाम के कवानीन इज्तमाई कवानीन हैं, और इस्लाम हुकूमत को भी ज़िम्मेदार बनाता है कि इसके कवानीन को मुअत्तबर जाने और इनको अमली जामा पहनाए, और अगर कोई हुकूमत इस्लाम के कवानीन को मुअत्तबर ना जाने और इनको जारी कराने की फ़िक्र में ना रहे तो इस्लाम की नज़र में इस हुकूमत का कोई एतबार और मशरूयत नहीं है। नंबर 3, इस्लाम माशरे को इदारा नहीं कर सकता। एक शुबा, यहाँ पर एक शुबा ये होता है कि आजकल इंसान की ज़िंदगी तरक्की याफ्ता दौर में बड़े पैमाने पर नए नए कवानीन का नियाजमंद है, और इन सब का जवाब कुरान करीम या सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम में नहीं पाया जाता। आज इंसानों को इस तरह के कवानीन की ज़रूरत है कि जो सदर इस्लाम में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे, तो इनका हुक्म ही कहाँ से बयान हुआ होगा। مثال کے طور پر فضائی اور ہوائی لائن کے مسائل کو پیش نظر رکھیں کہ کیا کوئی ہوائی جہاز کسی دوسرے ملک کی فضا میں بغیر اس ملک کی اجازت کی گزر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کے قوانین قرآن یا حدیث رسول یا کلام آئمہ معصومین علیہ السلام میں نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا تصور ہی نہیں تھا تاکہ یہ مسئلہ پیش آتا کہ ہوائی جہاز دوسرے ملک کی فضا سے گزر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ٹریفک اور ڈرائیونگ کے مسائل، اس وقت میں بس یا گاڑی کا وجود نہیں تھا کہ اس کے قوانین بیان ہوتے۔ اسی طرح دوسرے قوانین کے جن کی انسان کو اس وقت ضرورت ہے، مثلا دریا اور سواحل کے قوانین، اور اس طرح کے دوسرے قوانین کے جن کے بارے میں ابھی تک خاص قوانین نہیں بنائے گئے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ حقوق داں اور قانون گزار حضرات اس سلسلے میں بڑے غور و فکر سے ان کے لیے قوانین بنائیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے پیش نظر قرآن اور حدیث میں ذکر کیے گئے قوانین انسان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں اسلامی قوانین نافذ ہونا چاہیے جبکہ بعض چیزوں کے بارے میں اسلام کوئی قانون ہی نہیں رکھتا؟ لہٰذا انسان کے لیے ایسے قوانین کی وضع ضرورت ایک طرف اور اسلام میں ایسے قوانین موجود نہ ہونا دوسری طرف، تو اس موقع پر کیا کیا جائے اور ایسے موقع پر ہم کس طرح اسلامی قوانین پر پابند ہوں؟ اب تک جو ذکر ہوا یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا جو اسلام کو نہیں مانتے اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی قوانین معاشرے کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں اور ان کی جگہ بشریعت کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کیا جائے۔ اعتراض کرنے والوں نے موضوع مشکل اور پیچیدہ کرنے کے لیے اس اعتراض کو مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے اور لوگوں نے اپنے مختلف خواہشات کی بنا پر اس سلسلے میں مختلف بیان دیا ہے، لیکن ان سب کا ہدف اور مقصد اسلامی حکومت کو کمزور اور متزلزل کرنے کے لیے ہے کہ اسلام معاشرے کو ادارہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کی باتیں کرنا اور ان پر اصرار اور تاکید کرنا بے فائدہ ہے۔ لہٰذا حکومت کو اسلامی ہونے کے نظریے کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض اسلامی انقلاب کے طرفدار اور اسلام کے معتقد افراد بھی اس شبہ کے تحت تاثیر واقع ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس اعتراض کا مناسب اور محکم جواب دیا جائے تاکہ اسلام کے قوانین پر پابند رہیں اور جن مسائل میں معاشرے کی ضرورت کے تحت اسلام میں قوانین کو نہ پائے تو اس کی راہ حل کو پہچان لیں۔ نمبر 4، قوانین کی مختلف اقسام اور متغیر قوانین ہونے کی ضرورت۔ مذکورہ اعتراض کے جواب میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ قانون کے ایک وسیع اور عام معنی ہیں اور تکوینی قوانین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، مثلا فزک اور شیمی کے قوانین اور قانون لاوزہ، جاذبہ نیوٹن اور نسبی اینشٹین۔ اس طرح کے قوانین کہ جو تکویناً موجود ہیں اور واقعیت بھی رکھتے ہیں، دانش مندوں کے ذریعے کشف ہوتے ہیں اور بنائے جانے والے نہیں ہیں، اور یہ قوانین ثابت اور طبعی اور واقعی چیزوں سے مربوط ہیں اور حقوقی اور سیاسی مسائل سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اسی طرح عقلی قوانین، مثلاً منطقی اور فلسفی قوانین اور میتھمیٹک کے مسائل سے ہماری بحث نہیں ہے، بلکہ ہماری بحث ان قوانین سے ہے جو قابل وضع ہیں، جن کو اصطلاح میں اعتباری قوانین کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کا اعتبار اور ان کا جاری کرنا اس صورت میں صحیح ہے کہ کوئی معتبر مرکز ان کو وضع کرے، اور قوانین کی 3 قسمیں ہیں۔ الف، قانون اساسی۔ قانون اساسی یعنی بنیادی قوانین، ان قوانین کو کہتے ہیں کہ معمولاً ثابت اور ہر ملک کی ثقافت کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ قوانین نسبتاً ثابت یعنی غیر قابل تبدیل ہوتے ہیں اور ایک طولانی مدت تک جاری رہتے ہیں۔ یہ روزمرہ والے قوانین نہیں ہوتے اور انہی کو معاشرے کو ادارہ کرنے کی اصل سمجھا جاتا ہے۔ یہ قوانین ثابت ہونے اور پہیم تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے کلی اور محدود ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ملک کے اساسی اور بنیادی قوانین چند اہم اور بنیادی اصولوں کو شامل ہوتے ہیں، لہٰذا جزوی اور वो वक्ती कवानीन कि जिनकी ज़रूरत भी ज़्यादा है लेकिन ज़मान व मकान के लिहाज से बदलते रहते हैं, इनको कानून असासी में रखा जाए। और कानून असासी में कुल्ली कवानीन और साबित कवानीन पर ही इक्तफा किया जाए और इनमें जुज़ई कवानीन को बयान करने से परहेज़ किया जाए। मगर वो जुज़ई और महदूद कवानीन के जो अहम हैं और इनका ज़िक्र होना ज़रूरी है, वे पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन। कवानीन की दूसरी किस्म वो है कि जिनको पार्लियामेंट में बनाया जाता है, अगर जब बाज़ मुल्कों में पार्लियामेंट के अलावा मजलिस सना भी पाई जाती है या इसको कोई दूसरा उनवान दे दिया जाता है, और इसके कवानीन भी पार्लियामेंट के कवानीन की तरह मुआतबर माने जाते हैं। हमारे मुल्क में भी पार्लियामेंट के अलावा एक मजलिस शोरा निगहबान होती है कि जो दूसरे ममालिक में मजलिस सना या कानून असासी कोर्ट की तरह है, जिसमें कुछ फिक्का और हुकूक दां हजरात शामिल हैं। मजलिस शोरा निगहबान इस्लामी पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को कानून असासी और कानून शरई से तत्बीक करते हैं, और अगर वो कवानीन कानून असासी और कानून शरई से मुवाफिक ना हो तो इनको लौटा देते हैं ताकि इन पर नजर सानी की जा सके। जीम, अंजुमन हुकूमत के बनाए गए कवानीन। हर मुल्क में पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन के अलावा दूसरे मरकज़ों के ज़रिए भी कवानीन बनाए जाते हैं और वो भी लाजिम उल इजरा होते हैं, जिसका नमूना अंजुमन हुकूमत हय्यत दौलत के बनाए हुए कवानीन हैं। कानून असासी ने इस बात की इजाज़त दी है कि हुकूमती अंजुमन ख़ास मौक़ों पर कानून बनाए। इसी तरह सदर मुमलिकत भी ख़ास मौक़ों पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तस्मीम गिरी करे, और ये हुकूमती अंजुमन और सदर मुमलिकत के बनाए हुए कवानीन पार्लियामेंट में नहीं जाते बल्कि ख़ुद ही कानूनी और लाजिमुल इजरा होते हैं। और इसी तरह वो कानून दस्तावेज़ और बख्श नामे जो किसी वज़ीर के ज़रिए बाज़ इदारों और दूसरे मरकज़ों को दिए जाते हैं, और इनको भी एक तरह का कानून कहा जाता है, और हुकूमत इनको भी जारी करने की ज़ामिन होती है। लिहाजा हमारे मुल्क और इसी तरह दूसरे बाज़ मुल्कों में तीन तरीके के कानून होते हैं। नंबर 1, कानून असासी। नंबर 2, पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन। नंबर 3, हुकूमती अंजुमन या सदर मुमलिकत के बनाए हुए कानून, और इसी तरह इन मरकज़ों के कवानीन जिनको कानून ने ही इजाज़त दी हो। और ज़ाहिर है कि दुनिया के किसी भी गोशे में किसी भी ज़माने में मुमकिन नहीं है कि तमाम कवानीन और मुकररात को एक जगह और एक ही ज़माने में बना लिया जाए, चूँकि वज़ा शुदा कवानीन और इजराई आइन नामे ज़मान व मकान के बदलने के लिहाज से ज़रूरत है कि कानून तब्दील हों और इन पर तजदीद नज़र हो। मसलन पार्लियामेंट आज कोई कानून बनाता है, लेकिन हो सकता है कि कल हालात बदल जाएं और इस कानून को बदलने और इनमें तजदीद नज़र करने की ज़रूरत पेश आ जाए। इसी तरह इजराई मुकररात और कवानीन भी हालात के लिहाज से काबिल तब्दील हैं और इन पर नजर सानी होती रहती है। इसी तरह जब कोई हुकूमत बदलती है तो एक महदूद दायरे में रहकर कुछ कवानीन को बदल सकती है, अलबत्ता वो लोग जो माशरे की बहबूद चाहते हैं, और इनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि कवानीन को इस तरह दिक्कत और गौर व फिक्र करने के बाद बनाया जाए कि माशरे के लिए बहुत मुनासिब हों और इसमें कम से कम खामियाँ हों। ज़ाहिर है कि जब हम ये कहते हैं कि कवानीन को इस्लामी होना चाहिए तो इससे हमारी मुराद ये नहीं होती कि तमाम कवानीन, चाहे कानून असासी हों या पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन, सब का तस्करा कुरान मजीद में मौजूद है। नंबर 5, कवानीन का इस्लामी होने का मतलब। कवानीन और मुकररात के इस्लामी होने और इनके मायने की वजाहत के बारे में अमूमी कवानीन के ऊपर नज़र करना मुफीद है। नमूने के तौर पर कुवाए मुजरिया या हय्यत हुकूमत इसी दायरे में रहकर कवानीन को बना सकती है कि जिनमें पार्लियामेंट ने इजाज़त दी हो, यानी इनका दायरा वसी नहीं है। दूसरे अल्फाज यूं अर्ज़ किया जाए कि इनके अख्तियारात की हद कानून असासी और कानून पार्लियामेंट मुअय्यन व महदूद करते हैं, और इजराई कवानीन भी इसी के तहत होना चाहिए। यानी ये कानून इन कुल्ली अहकामात के मसादिक हैं कि जो कानून असासी और पार्लियामेंट के कानून में पास हो चुके हैं। लिहाजा ये कानून पहले कानून असासी और कानून पार्लियामेंट में बयान होते हैं। इसके बाद हय्यत हुकूमत या दूसरे साहिब मनसब हजरात ख़ास मवारद में इन कुलियात के मसादिक को कानून की शक्ल में तंजीम करते हैं। खुलासा ये कि ये कानून सिर्फ़ इनके दिल ख्वाह नहीं होते, बल्कि कानून असासी और कानून पार्लियामेंट के मवाफिक होते हैं, और पार्लियामेंट के कानून भी शोरा निगहबान के तायद शुदा होने चाहिए, और इसी सूरत में ये कानून मोतबर होते हैं और इनके जारी होने की ज़मानत होती है। लिहाजा इन कवानीन का मोतबर होना और लाजिमुल इजरा होना इस चीज़ पर मौकूफ़ है कि वो पार्लियामेंट के कवानीन के मवाफिक हों, और पार्लियामेंट के कवानीन के मोतबर होने का मयार ये है कि वो कानून असासी के मवाफिक हों, और कानून असासी के मोतबर होने का मयार ये है कि वो खुदावंद आलम के तशरी इदारे के ताबा हों। इस तरतीब के लिहाज से ये कवानीन एक दूसरे के ताबा होते हैं, और इनके मोतबर होने में इस तरह का लिहाज ज़रूरी है कि ये तमाम कवानीन इस्लाम और खुदावंद आलम के तशरी इरादे पर ख़त्म होते हों, ना ये कि तमाम कवानीन और मुकर्रात और आइन नामे और पार्लियामेंट के कवानीन सब के सब कुरान मजीद और अहादीस शरीफ में मौजूद हों। अगर खुदावंद आलम ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अख्तियार इनायत किया कि ख़ास मवाद में ख़ास कानून बना सकते हैं, और चूंकि इस कानून में खुदावंद आलम की इजाज़त और इसका इरादा शामिल है, मोतबर और लाजिमुल इजरा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इनकी पैरवी खुदावंद आलम के हुक्म से वाजिब है, और इसी हुक्म में खुदा के ज़ेर साया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कानून भी मोतबर है, और हम मुसलमानों पर इनकी अताअत और पैरवी वाजिब है। और अगर हम खुदा के हुक्म से सिर्फ नज़र कर लें तो पैगंबर के दस्तूरात खुद ब खुद वाजिब नहीं रह जाते। लिहाजा वो कवानीन जो बराहे रास्त खुदावंद आलम की तरफ से हों और कुरान मजीद में साफ साफ बयान हुए हों, पहला दर्जा रखते हैं और खुद ब खुद मोतबर होते हैं। इसके बाद खुदा के हुक्म से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कवानीन दूसरे दर्जे में करार पाते हैं, और आपके बनाए हुए कवानीन खुदा के हुक्म की वजह से मोतबर हैं। इसी तरह आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के बनाए हुए कवानीन और अहकामात खुदा के हुक्म की वजह से मोतबर हैं, क्योंकि खुदा और पैगंबर ने आइमा अलैहिस्सलाम की अताअत को वाजिब किया है। अब अगर हम अपने को हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी इस्लामी मंतका में फ़र्ज़ करें, बेशक आपकी अताअत को अपने ऊपर वाजिब जानते, मसलन आप नालिक इश्तर को इस शहर का वाली बनाकर भेजते और ये फरमाते कि इनके अहकामात और दस्तूरात के ऊपर अमल करें और इनकी नाफरमानी ना करें, और जिसने इनकी अताअत की मेरी अताअत की, अगरचा मालिक इश्तर के अहकामात का बजाते खुद कोई एतबार नहीं है और वो भी दूसरों की तरह होते, लेकिन चूंकि इमाम का हुक्म हुआ है लिहाजा इस सूरत में इनके अताअत वाजिब और इनके अहकामात लाजिमुल इजरा हैं, क्योंकि ये इमाम मासूम की तरफ से मुकाम विलायत पर फ़ायज़ हैं और खुदा और पैगंबर की तरफ से मंसूब हुए हैं, लिहाजा इनकी अताअत वाजिब मानी जाती है, जबकि इमाम मासूम की तरफ से मंसूब शुदा वाली और हाकिम के दस्तूर और फरमान तीसरे दर्जे में हिसाब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामी पार्लियामेंट ने किसी साहिब मनसब को ये अख्तियार दे दिया कि वो किसी चीज़ के बारे में कोई दस्तूरुल अमल बनाए, और चूंकि इसको इस काम का अख्तियार दे दिया गया है लिहाजा इसके बनाए हुए कवानीन लाजिमुल इजरा हैं, इसी तरह कवानीन पार्लियामेंट भी कानून असासी की वजह से मोतबर है और इसके बनाए हुए कवानीन कानून असासी की वजह से मोतबर होते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में कानून असासी का एतबार लोगों के वोट और राय गिरी पर होता है, लेकिन हम कानून असासी का मकाम इससे बढ़कर बुलंद मानते हैं और यह अकीदा रखते हैं कि कानून असासी का एतबार खुदा की इजाज़त पर मुनहसर होता हो कि पैगंबर या इमाम मासूम या कोई शख्स मालिक इश्तर की तरह इस कानून असासी की तायद करे। इस वजह से कानून का एतबार खुदा रसूल और आइमा अलैहिस्सलाम के कलाम की वजह से है, اور اس کے بعد اس شخص کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو امام معصوم کی طرف سے معین ہو، اور یہی اسلام کا فلسفہ اور تھیوری ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں چونکہ ولی فقہ کے عمومی اعتبار سے امام علیہ السلام کی طرف سے منصوب ہے، تو اس کی ولایت امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے تائید شدہ اور معتبر ہے، اور ولی فقیہ کی تائید سے قانون اساسی معتبر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ قانون اساسی بذات خود معتبر نہ ہوگا۔ اور اس پر سوالیہ نشان باقی ہے کہ اس کا اعتبار کہاں سے ہے اور کس حد تک یہ معتبر ہے، اور کن لوگوں کو حق ہے کہ وہ قانون اساسی کو بدل سکیں۔ وہ قومیں جو اقلیت میں ہیں اور انہوں نے قانون اساسی کے بارے میں ووٹ نہیں دیا ہے، کس وجہ سے یہ لوگ اس قانون اساسی کی پیروی کریں، اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے سوالات۔ لیکن اگر ہمارا نظریہ یہ ہو کہ قانون اس صورت میں معتبر ہوگا جب امام معصوم کی طرف سے معین شدہ شخص اس کی تائید کر دے، تو پھر کسی سوال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نمبر 6، اسلامی حکومت میں قانون گزاری کا مسئلہ۔ اب تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قانون گزاری کے سلسلے میں اسلامی حکومت کی تھیوری یہ ہے کہ قانون کا اعتبار خداوند عالم کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد جس کو خداوند عالم یہ اجازت دے دے، مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ان کا کلام بھی معتبر ہے، اور اسی طرح پیغمبر جس کو منسوب کر دیں ہمارے لیے معتبر ہیں۔ جیسے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو منسوب فرمایا، لہٰذا ان کا کلام ہمارے لیے معتبر ہوا۔ اور اسی طرح اگر امام معصوم کسی کو عمومی یا خصوصی طور پر منسوب کر دیں، تو اس کا کلام بھی ہمارے لیے معتبر ہے۔ وہ فرمان اور احکامات کے جو درجات عالیہ سے صادر ہوتے ہیں، الہی اور اسلامی ہیں، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے تائید شدہ ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلامی حکومت میں کبھی کبھی یہ تائید چند واسطوں کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ ولی فقیہ کے لیے امام معصوم کی تائید ہوتی ہے، اور امام معصوم علیہ السلام کے ارادہ اور اختیار کی تائید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید سے ہوتی ہے، اور آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا اعتبار قرآن کریم کے صاف صاف بیان سے ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایماندار، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں سے اول الامر ہو ان کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اور اسی طرح یہ آیت بھی، ترجمہ: نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ بے شک مذکورہ رابطہ اسلام کے وضع شدہ اصول کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے مکمل طور پر قابل قبول ہے کہ جو خدا، پیغمبر اور امام معصوم کا اعتقاد رکھتے ہوں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ہم اس مسئلے کو سادہ زبان میں ان لوگوں کے لیے بیان کریں کہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی رسول خدا کو، اور امام معصوم کی حقانیت میں شک کرتے ہوں، ان کے لیے ایک دوسرے طریقے سے بحث ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام کے بنیادی اصول کو بیان کریں، اور اس کے بعد دوسرے مسائل کے بارے میں بحث کریں، جیسے حکومت و سیاست کے مسائل۔ البتہ ممکن ہے کہ اس بحث کو آزاد طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے قانون گزاری بہتر اور معاشرے کے لیے مفید تر ہو سکتی ہے، یا قانون گزاری کے دوسرے طریقے کہ جو رائج ہیں۔ نمبر 7، اسلامی حکومت میں قانون کے جاری کرنے والوں کو منسوب کرنا۔ اسلام کی سیاسی تھیوری میں قانون کو خدا کی طرف سے ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے زیر نظر قوانین اور مقررات، اگر خدا، رسول خدا، امام معصوم اور ان کے خاص یا عام جانشینوں کی تائید حاصل ہو، تو وہ قوانین معتبر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قوانین کا اجرا کرنے والا بھی خداوند عالم کی طرف سے معین ہو۔ البتہ قوائے قضائیہ بھی قوائے مجریہ سے مربوط ہوتی ہے، لیکن اس کی خاص اہمیت کی خاطر، اور اس وجہ سے کہ اختلاف وغیرہ کو حل کرنے کا ایک بہترین مرکز شمار ہو، اور قوانین کو جاری کرنے سے پہلے ان کے مصادق پر منطبق کرے۔ इसके लिए मुस्तकिल मकाम और ख़ास शराइत मुय्यन किए गए हैं। जिस वक्त पैगंबर या इमाम मासूम हाजिर हों तो वो ख़ुद कानून के जारी करने के ज़िम्मेदार हैं, या ये हजरात किसी को अपनी तरफ से मंसूब करें कि कानून को जारी करने का ज़िम्मेदार हो। जैसा कि हज़रत अली अलैह सलाम ने जनाब मालिक अश्तर को मिस्र का वाली और हाकिम मंसूब किया ताकि वहाँ जाकर कवानीन का नफाज करे। लेकिन इमाम अलैह सलाम की गइबत में कि जब अवामुल नास इमाम तक नहीं पहुँच सकती, कानून के नफाज की जिम्मेदारी इस शख्स की है कि जिसको इमाम ने बतौर आम मंसूब किया हो। और ये वही विलायत फ़िक्हिया है कि हम जिसके बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात वाज़ा हो चुकी है कि इस्लाम की सियासी थ्योरी और इस्लाम के हुकूमती ढांचे में जिस तरह कानून को खुदा की तरफ से होना चाहिए, यानी कानून या कुरान मजीद में मौजूद हो या आ हदीस पैगंबर में मौजूद हो कि जिसका एतबार भी खुदा की तरफ से है, या इमाम मासूम की तरफ से कि जिनका एतबार पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, या इस शख्स की तरफ से हो कि जिसको खुदा या रसूल या इमाम ने कानून गुजारी की इजाज़त दी हो, यानी इसी तरह कानून का नाफिज करने वाला भी खुदावंद आलम की तरफ मंसूब हो और वो खुदावंद आलम की तरफ से ख़ास या आम तौर पर मुअय्यन किया गया हो। इसी तरह कुवा कज़ाइया भी खुदावंद आलम की तरफ मंसूब हो, यानी काजी या तो बराहे रास्त खुदावंद आलम की तरफ से मुअय्यन हो या गैर मुस्तकीम तौर पर मुअय्यन हो, और अगर काजी किसी भी तरह खुदावंद आलम से नस्बत ना रखता हो तो इसका कोई एतबार नहीं। कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैह सलाम को बराह रास्त कजावत के लिए मंसूब करने के बारे में इरशाद होता है। तर्जुमा, हमने फरमाया, ए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन पर अपना नायब करार दिया तो तुम लोगों के दरमियान बिल्कुल ठीक फैसला किया करो। सूरह स्वाद आयत नंबर 26। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद होता है। तर्जुमा, जिस तरह खुदा ने तुम्हारी हिदायत की है इसी तरह लोगों के दरमियान फैसला करो। सूरह निसा आयत नंबर 105। इसी तरह दूसरी जगह इरशाद होता है, बस ए रसूल, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, इस वक्त तक ये लोग सच्चे मोमिन नहीं होंगे जब तक अपने बाहमी झगड़ों में तुमको अपना हाकिम ना बनाएं। सूरह निसा आयत नंबर 65। नतीजा ये निकला कि इस्लाम की सियासी थ्योरी हुकूमत, सियासत और माशरे की मुदीरियत और तमाम के तमाम अमूर खुदावंद आलम के तशरी इरादे पर ख़त्म होते हों। नवी नशस्त पेज नंबर 113। दीनी निज़ाम में कवानीन का मकाम। नंबर 1, इस्लाम के सियासी नज़रिए के उसूल। इस बात का ख्याल रहे कि इस्लाम के सियासी नज़रिया और फ़लसफ़े की बहस से मुतालिक उसूल मौजूद हैं। बाज़ अफराद इन सब को कबूल करते हैं और कुछ लोग सिर्फ़ बाज़ को कबूल करते हैं, और चंद ऐसे भी हैं जो इनमें से किसी को कबूल नहीं करते हैं। लेकिन इस नज़रिए को साबित और बयान करने के लिए ज़रूरी है कि इसके उसूल को बयान किया जाए, और इस एतबार से कि इनमें से कुछ उसूल बहुत वाज़ा हैं, लिहाजा सिर्फ इसके इशारे और मुख्तसर तौजी पर इक्तफा किया जाएगा और वाजा बहसों के ज़िक्र से इज्तनाब किया जाएगा, क्योंकि वाजा और रोशन बहसों को किसी भी इल्म में बयान नहीं किया जाता और ज़्यादातर उसूली बहस की जाएगी ताकि बहस के लिए राह हमवार हो सके। अलिफ, कानून। हमारी बहस की अनावीन और उसूल में बयान हुआ है कि माशरा कानून का मोहताज है, जैसा कि ये बात बयान की जा चुकी है। इस्लाम के सियासी नज़रिए की दूसरी असल ये है कि कानून को खुदा की तरफ से होना चाहिए, और जैसा कि ये बात भी बयान की जा चुकी है कि इसका नफाज भी खुदा ही की तरफ से होना चाहिए। कानून इलाही से मुराद ये है कि या खुद खुदा ने कानून बनाया हो और इसको कुरान में नाजिल किया हो, या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूम इमामों को कानून बनाने की इजाज़त मिली हो ताकि मुख्तलिफ हालात में इसी के अतबार से कानून बनाएं। इसी बिना पर कानून की तीन किस्में हैं। नंबर 1, वो कानून जिसको खुदा ने बनाया है और पैगंबर और इमाम इसके बनाने में शरीक नहीं हैं। नंबर टू, वो कानून जिसको मासूम अलैहिस्सलाम ने खुदा की इजाज़त से बनाया है। नंबर थ्री, वो मुतगैर कवानीन जिनको कुछ अफराद मासूम अलैहिस्सलाम की इजाज़त से बनाते हैं। ये कवानीन इस्लामी माशरे के लिए मोतबर करार दिए गए हैं, इसलिए कि आखिरकार इनकी बाज़ गश्त हुक्म खुदा और इसकी इजाज़त की तरफ होती है। इस बिना पर खुदावंद आलम खुद कानून को बनाता है और खुदा के कवानीन कुरान में ज़िक्र हुए हैं। लेकिन कानून का नाफिस करने वाला खुदा नहीं है। कानून का नाफिस करने वाला ऐसा शख्स होना चाहिए जो माशरे में मौजूद हो और लोग इसको देखते हों, वो लोगों को अमरो नहीं करे और कवानीन को नाफिस करे। पहली मर्तबा में पैगंबर और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे मर्तबे में वो अफराद हैं जिनको पैगंबर या इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ से नफाज कानून की इजाज़त मिली हो। इस बिना पर कुछ हज़रात पैगंबर अकरम या इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लामी इलाकों और सूबों के वाली और कारिंदे के उनवान से इजरा कवानीन के लिए भेजे जाते थे और गैबत इमाम अलैहिस्सलाम में इस काम के ज़िम्मेदार फुका और मराजा इकराम हैं जो बतौर आम नसब हुए हैं और कवानीन के इजरा के ज़िम्मेदार हैं। अब तक जो कुछ बयान हुआ इस हुकूमत की कुलियात थे कि जिसके दो हिस्से थे, कानून गुजारी और कवानीन का नफाज। और जैसा कि अदालत का महकमा दर हकीकत इजराई महकमे का एक जुज है, इंशाल्लाह हम इसकी अहमियत की खातिर अलग से बहस करेंगे। यहाँ इस किताब का ये पार्ट ख़त्म हुआ। अगले हिस्से में नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे।